रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बल धामं हेम शैलाभुदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री कृष्ण का जैसा बाल चरित्र आता है, ऐसा उछलता कूदता भगवान राम का बाल चरित्र नहीं आता। स्वाभाविक ही बालक के अंदर जो आकर्षित करने वाली चंचलता होती है, मनमोहक चंचलता होती है, उसका थोड़ा बहुत वर्णन करते हैं, परंतु सार बात बता दी माधुरी में भक्त को डुबाने के लिए भगवान ने कैसी विचित्र वहां माया रखी। स्वयं कौशल्या माता माया और भक्ति में से भक्ति को चुन करके अपने बालक बने हुए भगवान को भगवान मान करके चरणों में प्रणाम करने लग गई थी। तो फिर भगवान ने उनको कहा कि आप ये माया समझिए, जो मैंने आपको माया बताई है ये वास्तव में प्रेममयी माया है, प्रेम के लिए माया बताई है मैंने। हरि जननी बहुविधि समझाई, यह जनी कतौ कहसी सुन माई। ये प्रेम की बात हर किसी को मत बताना। ये एक बाल चरित्र का खास चरित्र तो बता दिया। तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं कि बाल चरित्र हरि बहुविधि कीना अति आनंद दासन कह दीना। बाल चरित्र भगवान ने बड़े विचित्र ढंग से किए और बाल चरित्र करके सबको आनंद दिया। खूब आनंद से भगवान बाल चरित्र करते थे। भगवान के चूड़ाकरण कीन गुरु पाई, ये जो शिखा काटते हैं माने जड़ूला कर गए, जड़ूला वगैरह भगवान का उतारा गया। दशरथ जी महाराज के आंगन में भगवान बहुत विचित्र विचित्र ढंग से लीला करते हैं। अब एक लीला और बताते हैं, उस लीला पर आप थोड़ा सा विचार करना। भगवान बच्चों के साथ भाइयों के साथ खेल रहे हैं और राजा भोजन करत बोल जब राजा, अब भोजन करने का समय आया। दशरथ जी महाराज भोजन करने बैठे, करे बच्चों ने भोजन किया कि नहीं। देखो माता पिता बड़े बूढ़े होते हैं, पहले बच्चों को भोजन कराते हैं उसके बाद भोजन करते हैं। तो भोजन करे तो बोल जब राजा, भोजन का समय हुआ, दशरथ जी कह रहे बेटा राम आओ आओ, राम आओ आओ, नहीं आवत तजी बाल समाजा, राम जी नहीं आते हूं नहीं आते। लेकिन कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जी आवाज लगाती है, अरे बेटा राम आओ ना, तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पर आई, ठुमक छम छम ठम, धीरे धीरे भगवान चले आते हैं। क्यों? सोई सुख, सोई गति, सोई भगति। देखो भगवान ने कहा कि कौशल्या माता जी आपके पास इसलिए ठुमुक ठुमुक के कर गया, आपने वो सुख मांगा था। और दशरथ जी महाराज बुलाते हैं तो क्यों नहीं आए कि आपने हमसे आनंद नहीं मांगा, सुख नहीं मांगा, आपने तो भक्ति मांगी थी। तो भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत प्रभु तजिबाल समाजा। लेकिन कौशल्या जब जाए बुलाई तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पर आई। अब यहां गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि निगम नेति शिव अंतन पावा। देखो कौशल्या माता पर कैसी भगवान की कृपा हुई कि शास्त्र लोग जिसका अंत नहीं पाते हैं वो माता कौशल्या जाकर के हठ पूर्वक उनको पकड़ लेती है, कब्जे में आ गई कौशल्या जी की। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम के अधीन है। आपने भागवत सुना होगा, भगवान कृष्ण है वो माँ के गोद में बैठे हुए कि मैया मैं तो दूध पीऊंगा, अरे बेटा तू रोज मक्खन के नहीं, मैं तो दूध पीऊंगा। तो माँ दूध पिलाने लगी तो इधर वो दूध उफनने लग गया, वहां चूल्हे पर रखा हुआ दूध था। तो माँ ने क्या किया, बिलोना भी छोड़ दिया और कृष्ण को भी छोड़ दिया और दौड़ करके जा करके और वो रसोई में गई दूध। तो पीछे से भगवान ने पत्थर लेकर के मटका फोड़ दिया, मटका फोड़ करके भगवान वहां से भागने लगे, मैया मारेगी। उस समय का इतना सुंदर वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज, वो भक्ति में डूबे हुए बोलते हैं कि सुनो परीक्षित, वो आनंद हम कह नहीं सकते हैं। किसको आनंद मिला? वो भगवान कृष्ण को तो दौड़ने में आनंद मिला और यशोदा जी को पीछा अनुसरण करने में आनंद, दोनों आनंद में। भगवान रो रहे हैं और मैया मारेगी, देखो देखो वहां रोने में आनंद, भगवान के रोने में आनंद। जैसे भक्त भगवान के लिए रोता है तो भक्त के रोने में बड़ा आनंद आता है, ऐसे वहां भगवान रो रहे हैं मैया मारेगी मुझे, तो भगवान को आनंद मिलता उस रोने में। और मैया अपने हाथ में एक डंडी लेकर के क्रोध में दौड़ रही तो मैया को भी आनंद आ रहा है। क्रोध में आनंद हो, क्योंकि क्रोध का विषय कोई संसार थोड़ा ही है, क्रोध का विषय उन भगवान है। भगवान ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जितने विकार है इनको तो बदनाम कर दिया हम लोगों ने, संसार में लगा दिया, तो बहुत अच्छी चीज है ये। काम भी अच्छा है, क्रोध भी अच्छा है, लोभ भी अच्छा है, मोह भी अच्छा है, अहंकार भी अच्छा है, ये सब बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि इनको हम भगवान के साथ नहीं जोड़ते ना तब ये खराब मालूम देते हैं, बंधन कारक होते हैं। नहीं तो भक्तों ने तो भगवान से कहा है कि महाराज ये अभिमान हमारा छूटना नहीं चाहिए और लोभ भी हमारा छूटना नहीं चाहिए, आपकी कामना भी हमारी छूटनी नहीं चाहिए, ऐसे भगवान से मांगा है। तो वहां यशोदा जी जाती हैं दौड़ी दौड़ी, फिर कृष्ण को पकड़ती हैं और कृष्ण भगवान खूब रोते हैं, फिर माँ को यूं पकड़ करके रोते हैं, माँ भी रोने लग जाती है, डंडी फेंक देती है, माँ मारती नहीं है, बच्चा यूं पकड़ ले माँ माँ को, अब माँ जैसे कसूरदार बच्चा हो। तो इतना रोए भगवान कृष्ण, इतना रोए कि माँ का हृदय द्रवित हो गया, वो खुद रोने लग गई, डंडा फेंक दिया। अब कहीं इसके कपोल पर थप्पड़ लगाऊंगा नहीं, ऐसे ऐसे सुनहले बच्चे को मारा भी नहीं जाए तो एक डोरी लेके बांध दिया। सभी जानते हैं इस कथा को। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वो सुख ब्रह्मा को भी नहीं मिला जो आज यशोदा जी को मिला। पर भगवान कृष्ण तो लीला करने आए थे ना, यहाँ भगवान राम कितने मर्यादा में है, लीला वही है पर मर्यादा कितनी बंधी हुई है। कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पराई, निगम नेत शिव अंतन पावा, ताई धरे जननी हटि धावा। और माँ ने उनको पकड़ लिया, धूसर धूरी भरे तनु आए। अब देखो ध्यान देना, वो भगवान खेलते खेलते खूब मिट्टी लग गई शरीर में, मिट्टी लग गई हो तो भूपति भी ऐसी गोद में, तो जाके पकड़ करके दशरथ जी ने अपनी गोद में बैठा लिया। यहाँ भगवान दशरथ जी के हाथ से नहीं जाते हैं, क्योंकि सुख हमको कौशल्या माता ने मांगा था ना, तो सुख अंश हम उनको देंगे। आपके बुलाने से आने में और कौशल्या के बुलाने के आने में कौशल्या को ज्यादा सुख मिलेगा, इसलिए कौशल्या के पास आ गए। भोजन करत चपल चित इतउत अवसर उपाय भाजी चले किल कत मुख दधी ओ दन लपटाय। कौशल्या जी की गोद में होते ना तो भगवान दौड़ते नहीं, यहाँ भगवान दशरथ जी गोद में बैठे भोजन करत चपल थोड़ा थोड़ा लिए यूं देखते हैं, हमारे जो है भाई किधर है बच्चे के यूं देखते हैं, खेलने में मन है। और दशरथ जी की गोद में बैठे तो बाहरी चले किलकत मुख दधी ओदन लपटा है, दही और चावल यू खाए हुए बीच में उठ करके भग जाते हैं। बाल चरित्र अति सरल से, ये बाल चरित्र भगवान का है। कहते हैं भगवान राम का बाल चरित्र खूब बड़े प्रेम से कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर गाते हैं और शेषनाग भी गाते हैं, सरस्वती भी गाती रहती है। ऐसे भगवान के बाल चरित्र के सुनने पर भी उनके स्वरूप में और उनकी लीला में जिसका मन रंजित नहीं होता, आनंदित नहीं होता, वास्तव में वो ठगे गए। तेजन वंचित किए विधाता, वे इन चीजों से वंचित ही हो गए। अब भगवान को जनेऊ हो गया साहब, जनेऊ होने के बाद अपने गुरु महाराज के यहां पढ़ने के लिए गए। कृष्ण भगवान तो 64 दिन और यहां अल्पकाल विद्या सब आए। वहां गुरु महाराज के पास क्यों पढ़ने गए, जब ये भगवान राम भी क्यों गए? देखो कई के लोग बोलते हैं जिनको गुरु बनने की शौक होती है, वो यो कहते हैं कि अरे भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाया था, वो सांदीपनी को गुरु बनाया था, भगवान राम ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया था, तभी तो वो गुरु जी के पास रहे, गुरु जी से विद्या ली। तो संसार में गुरु बनाओगे तब तो देखो आपका उद्धार हो जाएगा, और गुरु नहीं बनाओगे तो उद्धार नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, आप नुगरे रह जाओगे। देखो रामचरितमानस में लिखा है गुरु गृह गए पढ़न रघुराय, तो राम जी महाराज ने गुरु तो बनाया ही था, इसलिए गुरु बनाओ भाई, गुरु बनाए बिना कल्याण नहीं होगा। ऐसे लोगों को खूब गुरु बनाने के लिए बात बोलते हैं। आप देखो कहने में तो बात सच्ची है, ये कहने में बात बिल्कुल सच्ची है, शास्त्र का उदाहरण है और भगवान के चरित्र के साथ में जोड़ करके बात कही। पर कभी कभी कोई चीज है खूब अच्छी कही जाती है, लेकिन उसके साथ में भाव क्या है उनका? भाव यह रहता है कि भाई ये हमारे शिष्य बने, हमको गुरु माने, हमको बड़ा माने। तो एक बार किसी ने ऐसा महाराष्ट्र से प्रश्न किया कि महाराज राम जी ने भी गुरु बनाया और कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाया, तो जो है हम गुरु बनते हो तो इसमें क्या हर्जे की बात है? तो महाराज जी ने कहा कि राम जी ने गुरु बनाया ना, तो आप लोग भी गुरु बनाओ। राम जी ने चेला किसको बनाया बताओ? राम जी का उदाहरण लेते हो तो राम जी ने चेला किसको बनाया? राम जी ने चेला तो किसी को नहीं बनाया, कृष्ण को किसी को नहीं, किसी ने किसी को भी शिष्य नहीं बनाया। भगवान कृष्ण ने चेला नहीं बनाया, भगवान राम ने चेला नहीं बनाया। इसलिए आप चेला क्यों बनाते हो? आप भी गुरु बनाओ। चुप हो गए। आप गुरु बनने के लिए राम और कृष्ण का उदाहरण देते हो कि उन्होंने गुरु बनाया, ऐसा मत को। आपको ये कहना चाहिए कि वशिष्ठ जी भी तो गुरु बने थे, सांदीपनी भी गुरु बने थे, तो हम भी गुरु बने तो क्या अर्जा है? कि बिल्कुल आप ऐसा तर्क रखो, ये साहब चलो ये तर्क ही सही। तो अब इस तर्क में ये कहते हैं यदि आपके भगवान जैसा चेला बनता हो तो आप गुरु बन जाइए। यदि भगवान आपके चेला बनते हो तो आप उनको एक गुरु बन जाइए। वशिष्ठ जी को ये मालूम नहीं था क्या कि राम भगवान है? सांदीपनी को मालूम नहीं था क्या कि कृष्ण भगवान है? सांदीपनी को मालूम था। ये सांदीपनी ऋषि थे, अपने गुरु जी के पास पढ़ते थे, तो वैसे कोई ज्यादा पढ़ते है बुद्धिमान छात्र नहीं थे, वो में कमजोर थे। ये भगवान के गुरु जी थे वो सांदीपनी। किसी बात को खूब घोखते थे, पढ़ते थे, तब थोड़ी समझ, जितनी मेहनत करते ना उतना उनके समझ में कम आता था। होती कई कई बुद्धि, कई कई बहुत तेज होते हैं, थोड़ा सा बता दो और फिर सब बात समझ लेते हैं, और कई ऐसे होते हैं खूब ही बताओ खूब बताओ तो बहुत कम बात पकड़ पाते हैं। तो ये बहुत मंद बुद्धि के थे सांदीपनी। वो गुरु जी के पास पढ़ते थे, गुरु जी मरने लगे तो सब शिष्यों को बुलाया, भाई आओ आ जाओ एक बार मिल लेते हैं, भाई शरीर का कोई भरोसा नहीं है, फिर तो कभी मिलना होगा नहीं। तो सब आए, तो कोई गुरु जी के लिए क्या लाया, कोई गुरु जी के लिए क्या लाया, कोई क्या लाया। गुरु जी ने कहा मैं लेने के लिए तुमको बुलाया ही नहीं हूं, मेरे पास कई ग्रंथ पड़े हैं, मैं देखता हूं मेरे विद्यार्थियों को ग्रंथ बांट दूं। किसी को कोई सा ग्रंथ दे दिया, किसी को कोई सा ग्रंथ दे दिया, पुस्तकें दे दी, किसी को आसन दे दिया, किसी को ये संध्या के पात्र दे दिए। ये सांदीपनी आए, गुरुजी ने प्रणाम किया, तो सांदीपनी को देख करके गुरुजी की आंखों में पानी आ गया। अरे सांदीपनी, तुम तो वास्तव में हमारे बड़े आज्ञाकारी शिष्य थे, आज्ञाकारी। हमारी आज्ञा को कभी भी तुमने किसी प्रकार से नहीं टाला। सांदीपनी के गुरु ने सांदीपनी को कहा, ए सांदीपनी, कहा महाराज ये देख, उनका छोटा बच्चा गुरु जी का कि इसको कुएं में डाल दे, तो वो कुएं में डाल दिया। उधर लड़के उसको मारने लगे सांदीपनी को, अरे छोटा छोटा बेचारा मूर्ख है, कोई बात नहीं, गुरुजी ने ये नहीं कहा कि इसको मैंने कहा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं बेचारा मंद बुद्धि कहा है, उसने ये नहीं कहा कि मैंने गुरुजी कहने से बच्चे को कुएं में डाला है। अरे सांदीपनी, हाँ महाराज, अरे आश्रम के चारों तरफ ये बाढ़ है ना, हाँ बाढ़ की आग लगा दे। वो जाके आग लगा दी, इतने में सब शिष्य इकट्ठे हुए, फिर मारने लगे कि सांदीपनी को मार, अरे मारो मत मारो, बेचारा मंद बुद्धि है कुछ जानता नहीं। कई बार मार पड़ी उनके, लेकिन एक शब्द नहीं कहा। गुरुजी ने परीक्षा ली उसकी कैसी भक्ति है। अंत में भाई गुरुजी द्रवित हो गए उसकी भक्ति देख करके, नहीं तो सीधा ही कह दे भाई मुझे क्यों मारो, मुझे तो गुरुजी ने कहा, वो आज्ञा का पालन किया। शायद ही कोई ऐसा होगा कि आज्ञा सुनकर के भी कसूर को अपने ऊपर ही लिया और गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं कहा हो, शायद ही कोई ऐसा होगा। ऐसा एक सांदीपनी था। तब फिर जो है सांदीपनी को आशीर्वाद दिया कि बेटा तुमने हमारी बात बहुत मानी, आज्ञा मानी, हमारे पास तुम्हारे को देने के लिए कुछ भी नहीं, एक आशीर्वाद है तुमको हम आशीर्वाद देते हैं कि त्रिलोकीनाथ भगवान तुम्हारे यहां बच्चे बनकर तुमसे शिक्षा लेंगे, तुम उनके गुरु बनोगे, तुमने गुरु आज्ञा का पालन किया इसलिए तुम त्रिलोकीनाथ के गुरु बनोगे, देख लेना। उन्होंने सोचा कि गुरुजी ने तो कह दिया और मेरे पास भगवान क्या पढ़ेंगे, मैं तो खुद ही इतना नहीं जानता हूं। लेकिन भगवान कृष्ण उज्जैनी गए थे, 64 दिन उनके पास रहे, तो गुरुगृह गए। भगवान गुरुजी के घर क्यों जाते हैं कि देखो भगवान अवतार लेते हैं तो सभी को शिक्षा देने के लिए। बाल लीला भगवान ने क्यों की कि बच्चों को ऐसी मधुर चेष्टाएं करनी चाहिए जिससे माता पिता के मन में प्रसन्नता हो। बच्चे लेते हैं कोई चीज तोड़ देते हैं, कभी उपद्रव करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसी चंचलता करो जो माँ खुश रहे, हंसती रहे। देखो खेल बच्चे को बहुत प्यारा लगता है, पर माँ ने कह दिया हे राम आओ आओ, तो ठुमुक ठुमुक चली रख, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पर आई, ठुमुक ठुमुक करके आगे। और पिता की गोद में बैठे और खाते पीते एकदम उठ के भग गए। तो ये ऐसी सात्विक चंचलता होनी चाहिए। थोड़े और बड़े हो तो गुरु की आज्ञा में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का अवतार तो सबके लिए होता है, तो पढ़ने वालों को गुरु के आदेश में रहना चाहिए, इसलिए भगवान पढ़ने गए थे। ये तो साफ लिखा है, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, चारों वेद है जिनके श्वास से निकलते हैं, वेद प्रकट होते हैं। सो हरि पढ़ यह कौतुक हरी, भगवान भगवान पढ़े बहुत बड़ा कौतुक है, आश्चर्य है। भगवान वहां खूब अच्छी विद्या पढ़ते, बड़ा विनय का व्यवहार करते, विद्या विनय निपुण गुण लीला, ये पढ़ाई की भगवान ने। पुस्तकों की पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती है, गुणों की पढ़ाई होती है, ये पढ़ाई होती है। और भगवान फिर जो है बाण चलाना भी सीखते थे, और ऐसे भगवान बाण चलाते, ऐसे दौड़ते, करतल बाण धनुष अतिसोआ, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी धनिया, छोटे छोटे बाण, उनको लेकर दौड़ना और बाण चलाना, देखत रूप चराचर मोहा। भगवान वो बाण रखे रखे जब अयोध्या के गलियों में दौड़ते थे तो सब लोग अपना काम धंधा छोड़ करके उनको देखने के लिए आ जाते थे, देखने के लिए आते, थकित तो हो ही सब लोग लुगाई। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणौते प्रिय लागत सब कहूं राम कृपाल। देखो सबको प्राणों से प्रिय लगते थे, जैसे आपने भागवत में सुना कि भगवान ने ब्रह्मा जी के साथ लीला की, उसमें ग्वाल बाल भी भगवान बन गए और बछड़े भी भगवान बन गए। अब वो बछड़े जाकर के बछड़े बने हुए भगवान गऊओं के पास जाते हैं, गायों में प्रेम पैदा होता है, माताओं से भगवान मिलते हैं तो माता ने कहा हमारा बच्चा है, अरे तुम्हारा बच्चा तो ब्रह्मा जी के लोक में गया हुआ है, पर किसको पता। ऐसे भगवान ने देखो, वहां कृष्ण लीला अलग है, पर यहाँ कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध और उबाल, बड़े बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो चाहे बालक हो, प्राणौते प्रिय लागत सबको राम कृपाल, प्राणों से ज्यादा प्यारे लगते थे, सब काम धंधा छोड़ करके राम के साथ ही उछलना कूदना उनके साथ रहते थे। अब भगवान थोड़े बड़े होकर के शिकार खेलने के लिए जाते थे, शिकार खेलते थे। अब कहीं कोई कहेगा कि भगवान शिकार खेलते हैं तो वही वहां पर शिकार में तो पशुओं को मारते हैं, तो भगवान ने शिकार क्यों खेला। शिकार तो राजा लोग शौक के लिए खेलते थे, भगवान का ये शौक क्या था तो पहले से ही बताते थे, पावन मृग मारई जिए जानी। भगवान पवित्र पशुओं को मारते थे। अब यहाँ कई प्रकार के भी पशु में पवित्रता क्या और अपवित्रता क्या। पवित्र पशु तो वो जैसे गाय है, देखो भाई गाय होती है ना, वो किसी की भी गाय हो, गाय पवित्र होती है। जिनका हम स्पर्श नहीं करते हैं ऐसे प्राणी की गाय यदि मिल जाए, गाय को खूब स्पर्श करते हैं, गाय को खूब जो है गले में लगाओ, हाथ लगाओ, यूं सींग लगाओ, खूब गाय को खूब करो। इस गाय का जो स्वामी है मालिक है उसका तो हम स्पर्श नहीं करते, पर गाय का स्पर्श करते हैं, क्योंकि शरीर गाय का बड़ा पवित्र है। तो कोई पावन मृग मारे जिए जानी, भगवान इन पवित्र मृगों को मारते थे। पवित्र मृग क्या है जी, पवित्र पशु कौन है, मृग नाम पशु का भी होता है। तो भगवान पवित्र पशुओं को मारते थे और दिन प्रति निरपय दिखा वही आ रहे, राजा को आके देखो साहब इसको मार दिया, इसको मार दिया, इसको मारा है, तो भाई अपने शंका हो जाएगी कि भगवान तो निरर्थक पशुओं को मारते थे, पर वो पवित्रता क्या है उसको गोस्वामी जी महाराज आगे खोल देते हैं। जय मृग राम राम के मारे, जय मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सुधारे सिधारे। भगवान राम ने अपने बाण से जिन पशुओं को मारा था वे शरीर छोड़कर के देवलोक में चले गए। ऐसे यदि कोई दूसरे मारने में सामर्थ्य तो भले ही मारो ना, भले ही मारो। किसी में सामर्थ्य है कि हम मारे और उसको देवलोक में पहुंचा देवे, सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने इसलिए उनको मारा चुन चुन करके कि अरे ये यहां बैठे क्या करता है, स्वर्ग में भेजो इसको, स्वर्ग में। ऐसे भगवान की बातें थी। भगवान अपने भाइयों के बीच में बैठते थे तो गुरु महाराज ने जो शास्त्र की बातें बताई उनका खूब अच्छे ढंग से विवेचन भी करते थे। आप कहीं अनुजन समझाई, वेद पुराण सुनई मन लाई, और आप कहीं अनुजन समझाई। उनकी दिनचर्या क्या थी? प्रात काल उठ के रघुनाथा पितु मातु पिता गुरु नावई माथा। प्रातःकाल अपने से बड़ों को प्रणाम करते थे। देखो माता पिता गुरुजन बड़ों को प्रणाम करने से उनके अंदर जो बड़प्पन है, उनकी जो विशेषता है, वो विशेषता आशीर्वाद के माध्यम से अपने में आ सकती है। किसी से कोई गुण लेना हो, किसी की कोई विशेषता लेनी हो तो भाई कैसे ली जा सकती है? केवल प्रणाम के माध्यम से। प्रणाम करते हाथ यूं जाता है तो यहां से आशीर्वाद निकलता है, वो आशीर्वाद से गुण आ जाते हैं उसमें। और फिर वे भगवान राजकाज का काम भी देखते थे। सुनो पार्वती सुनो, तुम कहीं ऐसे मत समझ लेना कि भगवान साकार रूप में आ गए तो इनके अंदर निराकारता लुप्त हो गई। ना ना, व्यापक अकल अनीह अजन निर्गुण नाम अनरूप, ये निर्गुण तत्व आ गया। भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप, ये सगुण की बात आ गई। गोस्वामी जी महाराज जहां भी चलते हैं निर्गुण सगुण निर्गुण सगुण ये मिला मिला के चलते हैं, दोनों को मिला के चलते। निर्गुण सगुण यूं भया ताने पेटे सूत, जैसे ये कपड़ा है, इस कपड़े के अंदर कुछ तो यूं धागे आ रहे हैं और कुछ धागे यूं जा रहे हैं, ताना और पेटा, ताना पेटा यूं। ऐसे निर्गुण और सगुण में अभिन्नता करते हुए बोलते हैं कि ये तो हमने आपको बात कह दी, यह सब चरित कहा में गाई और आगिल कथा सुनऊ मन लाई। देखो एक चरित्र होता है, एक कथा होती है। कथा कथा में और चरित्र में अंतर होता है। चरित्र होता है ना, उसमें अंदर तो और बाहर और दिखे। वास्तव में ये कौशल्या जी के बेटा नहीं है, दशरथ जी के बेटा नहीं है, सारे जगत के पिता है भगवान राम। लेकिन चरित्र ऐसा किया कि दशरथ जी के बेटा है, कौशल्या जी के बेटा है, सारे जगत के गुरु है। पर चरित्र ऐसा किया कि हम तो वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। तो यह सब चरित्र कहा मैं गाई, ये तो मैंने सब चरित्र कहा। आगिल कथा सुनऊ मन लाई, अगली कथा सुनो। अब यहां पर कथा में क्या है? देखो चरित्र में भगवान की मुख्यता होती है और कथा में भक्त की मुख्यता होती है। अब जो देखो भक्तों की मुख्यता होती है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन सुबह आश्रम जानी। अब विश्वामित्र का प्रसंग चला। इस विश्वामित्र के प्रसंग में ठेठ तक, बहुत दूर तक का प्रसंग, माने सीता जी का जहां विवाह वगैरह होगा वहां तक ये कथा ही कथा होगी, चरित्र नहीं होगा, वहां कथा है। थोड़ा बहुत कहीं भगवान का चरित्र फूट पड़े तो फूट पड़े, नहीं तो कथा चलेगी। चरित्र तो अब हो गया। देखो अजन्मा होकर जन्म लेना और सर्वनियंता होकर माँ बाप के अनुशासन में रहना, ये सब बातें चरित्र में ही होती हैं। चरित्र माने है तो और दिखे और। माँ भी कभी कभी बच्चा झूठा रोता है ना, करता रहता है, तो माँ के क्यों चरित करे भाई, माने तू नकली कर रहा है। ये सब भगवान भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान के लिए नकली तो बोल नहीं सकते, लीला ही बोल सकते हैं। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी महाराज बिचारे यज्ञ वगैरह करते थे और मारीच वगैरह से हरदम डरते रहते थे, क्योंकि जब ये यज्ञ करने के लिए बैठे तो ये मारी सुबाहु वगैरह आवे और सब आकर के यज्ञ में बाधा डाल दे, बिचारे बहुत दुखी हो गए वो। अब विश्वामित्र जी ने विचार किया कि भाई मैं खुद ही मार दूं। विश्वामित्र जी महाराज ने मारा नहीं, वो मार सकते थे निशाचरों को अपने मंत्र के प्रभाव से, पर नहीं मारा। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज को सुबाहु और मारीच को मारना ही नहीं था, इनको सदगति प्रदान करनी थी, सदगति प्रदान करनी थी। तो विश्वामित्र गाद इतने मन चिंता व्यापी, इनके मन में बड़ी चिंता हुई। हरि बिनु मरई न निश्चर पापी, अब ये भगवान के बिना कैसे मरेंगे। अरे हाँ, भगवान ने तो अवतार ले लिया, अब इसी बहाने से जाएंगे और बाल भगवान के दर्शन करेंगे, बाल भगवान के। तो ऐसा विचार करके वे दशरथ जी महाराज के पास आए। दशरथ जी महाराज ने सुना कि विश्वामित्र जी आए, तो दशरथ जी महाराज स्वागत के लिए गए। खूब आनंद से उनको महल में लाए, भोजन वगैरह करवाया और अपने बेटों को बोला, बेटा आओ आओ, ऐसे महात्मा कहाँ मिलेंगे, आओ आओ। चारों ही बेटों को लाया और विश्वामित्र जी को प्रणाम कराया। विश्वामित्र जी, राम देख मुनि देह बिसारी, राम जी को देखते ही रहे, देखते रहे, सब कुछ भूल गए वो। भय मगन देखत मुख शोभा, अब क्या क्या देखेंगे राम जी महाराज का, मुख देख लो, नेत्र देख लो, ये मुख में सब ही आ जाता है, नेत्र है, नाक है, होठ है, चिबुक है, सब आ जाता है। तो भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरण शशि लोभा, पूर्णिमा के चंद्रमा को जैसे चकोर देखता रहता है, चकोर आंख बंद नहीं करता, यूं चंद्रमा की तरफ देखता ही रहता है। तब जो है राजा ने कहा, महाराज बड़ी कृपा की आपने, पर मैं ये सुनना चाहता हूं कि आज आपके यहां पधारने में जो कृपा हुई उसका विशेष कारण क्या है, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है। आपकी आज्ञा होनी चाहिए, बस तत्काल पूरा करूंगा। तो देखो भाई, बात तो यह है कि असुर लोग मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं राम और राम के भाई को लेने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। इनके बिना वो निश्चर मरेंगे नहीं, और वो निश्चर जब मर जाएंगे तो मैं निहाल हो जाऊंगा, इसलिए तुम्हारे मन में मोह पैदा नहीं होना चाहिए। तुम बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों बेटों को मुझे दे दीजिए, तुम्हारा बड़ा यश बढ़ेगा, तुम्हारा धर्म बढ़ेगा और इनके अति कल्याण, ध्यान देना, राम और लक्ष्मण का अति कल्याण होगा, अति कल्याण। देखो क्या शब्द बोलते हैं हमारे तुलसीदास जी महाराज, अति कल्याण माने अति कल्याण, कल्याण तो सारी दुनिया का ही होता है, अति कल्याण क्या होता है। तो विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं ये तो कल्याण स्वरूप है, खुद कल्याण ही राम और लक्ष्मण के रूप में आया हुआ है। अब इतनी बात कह दी खुली, अब आगे दशरथ जी महाराज जाने, इनके अति कल्याण। तो राजा ने ये अप्रिय बात सुनी, अप्रिय। अप्रिय क्यों? सोई सुख सोई गति सोई भगति, ये जो भक्ति का वरदान लिया था ना मनु महाराज ने, वही तो दशरथ जी हैं। तो ये अप्रिय लगा कि राम का और मेरा वियोग होगा, यदि विश्वामित्र जी के साथ भेज देंगे तो वियोग होगा। उनका चेहरा एकदम उतर गया, हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज पहले मुझे जवानी में बच्चे मिल जाते तब तो बच्चों से प्रेम करते 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 कुछ प्रेम में कमी आती, पर यहां बुढ़ापे में मुझे ये बच्चे मिले हैं और इन्हीं को आप ले जाने की बात बोलते हो। आप मेरे से पृथ्वी मांगो, आप मेरे से गाय मांगो, धन मांगो, राज मांगो, कोष मांगो, सब कुछ मैं दे देता हूँ। सर्वस देव आज सहरोसा, सहरोसा माने सहर्ष, उसको दूसरे शब्दों में कहा सहरोसा माने सहर्ष देने के लिए तैयार हूं। आप मेरे से प्राण मांग लीजिए, एक क्षण में अपना प्राण दे दूं। आप कहो तो मैं लड़ने के लिए चला जाऊं, आप कहो तो मेरी सेना को भेज दूं, पर राम को देते नहीं बनता महाराज। अब देखो क्या बोल रहे हैं दशरथ जी महाराज, ये प्रेम की वाणी है। सोई सुख सोई गति सोई भगति, भक्ति के अंदर प्रेम के अंदर आदमी क्या बोलता है कुछ पता नहीं चलता। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, महाराज शरीर के और प्राण से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। ये प्राण मैं दे सकता हूँ पर राम को नहीं दे सकता। अरे तू राम को दे देने, प्राण को दे देगा तो फिर राम रहेंगे नहीं रहेंगे, तुम्हारे पास रहो चाहे नहीं तुम्हारा वियोग तो हो ही जाएगा ना। क्या बताए, प्राण देने के लिए तैयार, और कहते हैं राम मुझे प्राण से भी ज्यादा प्यारा है। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनई गोसाई। आप महाराज निशाचरों से लड़ाई करने के लिए हमारे बेटे को ले जाते हो, कहां तो इतने कठोर निशाचर, कहां मेरे ये सुंदर सुंदर परम किशोर मेरे पुत्र। अब देखो भगवान को मना कर दिया, भगवान को देने के लिए विश्वामित्र जी को मना कर दिया। विश्वामित्र जी अंदर से बड़े खुश हो गए। तुलसीदास जी महाराज जैसे कोई अंतर्यामी हो, भगवान के भक्त होते हैं, वो भक्ति का मर्म जानते हैं। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। बहुत प्रसन्नता हुई कि देखो दशरथ जी महाराज इनको अलग नहीं करना चाहते हैं। हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। वशिष्ठ जी महाराज ने और विश्वामित्र जी ने आंख से आंख मिलाई। वशिष्ठ जी महाराज समझ गए, उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो महाराज, आप ये विश्वामित्र जी को नाराज कर रहे हो। आप विश्वामित्र जी को नाराज कर देंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और विश्वामित्र जी बहुत कुछ सोच समझ के इनको ले जा रहे हैं। क्यों, जो विद्या मैंने प्राप्त नहीं की है वो विद्या हमारे विश्वामित्र जी के पास में है, वो विद्या इनको मिल जाएगी तो ये निहाल हो जाएंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नाश कह पावा। राजा के मन में जो संदेह था ना कि ये मारीच वगैरह वो कैसे मारेंगे, तो कान में वशिष्ठ जी ने कह दिया कि ये आपके बेटा है ही नहीं महाराज, आप इनको अपना बेटा ही क्यों मानते हो, ये तो चरु से पैदा होने वाला एक परम यज्ञ का फल है। हाँ हाँ, तो ये यज्ञ की रक्षा के लिए तो जा रहे हैं। जिस यज्ञ से आपने इनको प्राप्त किया उसी यज्ञ की रक्षा के लिए तो जा रहे हैं, ये अपने पिता के पास ही तो जा रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है। निरपसंदेह नाश कह पावा, राजा का संदेह दूर हो गया। अरे मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा कहां से आया, यदि वहां जो है ऋषि श्रृंग यज्ञ नहीं करते और वो चरु नहीं आता और खीर नहीं आती, विभाग नहीं होता तो थोड़ी होते। तो जिस यज्ञ से राम की उत्पत्ति हुई है उसी यज्ञ की रक्षा में जा रहे हैं, तो अपने बाप के पास ही है। आप बीच में बाप बन करके इनकी लीला को मत रोकिए। तो निरपसंदेह नाश कह पावा, राजा का जो संदेह था उसको नष्ट कर दिया। फिर राजा ने बड़े प्रेम से राम और लक्ष्मण को बुलाया। देखो कैसी विचित्र विचित्र बातें हैं। बहुत बड़े प्रेम से उन दोनों को छाती से लगाया कि बेटा गुरुजी के पास जाओ और जैसा गुरुजी कहे वैसा करना। और गुरुजी से कहा कि महाराज ये दोनों बेटा मेरे बहुत प्यारे हैं, और बेटा देखो तुम्हारे लिए गुरुजी से बढ़कर कोई माता पिता नहीं है। आजकल तो कोई गुरु पढ़ाने वाले होते हैं उनको जो है बड़ा बच्चों को ध्यान में रहता है और बच्चों को डांट देवे तो उनके माता पिता आकर लड़ने के लिए आते हैं। अरे आपके माता पिता लड़ते हैं गुरुजनों से आकर के, ये नहीं देखते कि जो लड़का आप नहीं सुधारते उस लड़के को ये सुधारते हैं, पढ़ाते हैं और धमकाते हैं तो आपको बुरा लगता है। नहीं, तुम मुनि पिता आन नहीं कहो। उनको भी कह दिया और उनको भी कह दिया कि भाई जो है आप इनके साक्षात पिता तो आप ही हो महाराज। बड़े प्रेम से उनको विदा कर दिया, माताओं ने आशीर्वाद दे दिया और पुरुष श्रेष्ठ राम और लक्ष्मण मुनि का भय दूर करने के लिए वहां से रवाना हो गया। कितना कितना काम होगा देखो। ऐसे ऐसे बीच में पद दिए हैं। अब देखो आगे चलिएगा, विश्वामित्र जी इन दोनों को प्राप्त करके ऐसा सोचते हैं जैसे कोई महानिधि पाई, संसार में बहुत बड़ा खजाना मिल गया उनको, महानिधि। विश्वामित्र महानिधि पाई। आज उन्होंने देखा कि मैंने राम और लक्ष्मण का गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। ऐसे चलते 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 बीच में ताड़क वन आया, जहां ताड़का रहती थी। ताड़का आई, भगवान ने एक बाण से ताड़का को मार दिया। कितनी बढ़िया बात है, यही तो कह रहे थे कि बहुत ध्यान सुना। ताड़का को मारने पर भगवान ने दीन जानी तेई निज पद दीना, उसको गरीब समझ करके अपना पद दे दिया, जाओ परम पद में जाओ। ये गरीबी क्या है भाई, गरीबी क्या है? कोई रुपए पैसे की गरीबी थोड़े ही थी। देखो राक्षस लोगों के पास धन बहुत होता था, राक्षस है, यक्ष है, ये सब धनाधिपति होते थे। तो सुनी ताड़का राक्षसी थी और वास्तव में ये यक्ष की पत्नी थी, इसके पास वैभव की कोई कमी, खूब धन था इसके पास, लेकिन भगवान ने दीन जान गरीब समझा। तो दीन किस में? इसने भजन साधन नहीं किया, इसने परमात्मा की प्राप्ति के लिए जरा सी भी चेष्टा नहीं की, पाप ही पाप बटोर ली, वो दयनीय है। अच्छे अच्छे संत महात्मा बोलते हैं कि भाई जिस आदमी का स्वभाव बड़ा खराब है, परिवार में लड़ता झगड़ता है, भगवान का भजन नहीं करता है, उसके ऊपर दया करो, वो दया का पात्र है, दया करनी चाहिए। दया तो दीनों पर की जाती है, जो भजन साधन से हीन होता है वो दया का पात्र है। तो इसीलिए भगवान दीन बंधु हैं। दीन बंधु माने जो पतित होते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं और किसी उपाय से भगवान के सामने आई गए। अभी ताड़का आई गई तो ताड़का राम जी के सामने भगवान समझ के थोड़ी आई है। ताड़का ने कहा हमारे वन में, हमारे जंगल में कौन आ गया? ताड़का हा करते आई, राम जी ने बाण छोड़ा। तो दीन जान निज पद दीना, कितनी राम जी की अति कोमल रघुवीर स्वभाव। आगे आएगा लिखा है भगवान कितने कोमल स्वभाव के हैं। एक भक्त ने कहा है कि प्रभु आप ये मत समझना कि आप बड़े चतुर हो, चतुर तो हम हैं, क्यों आपके स्वभाव की कमजोरी को हम जान गए, उस कमजोरी को जान करके हमने फायदा उठा लिया। क्या उठाया भाई? कि जन्म जन्मांतर से हम आपसे विमुख थे, लेकिन हमने देखा कि इतने से पार पड़ने वाली, हाथ जोड़ लो, आपको प्रणाम कर लो, आपको नमस्कार कर लो, आपकी कथा सुन लो और आपका नाम ले लो, एक जन्म में हमारे सारे पाप धुल सकते हैं, ऐसी कोई आपकी दया का प्रभाव है, वो दया के हम पात्र बन गए, अब महाराज हमारे उद्धार में कोई कमी नहीं है। तो एक ही बाण प्राण हरि लीना और दीन जानते निज पद दीना, अपना पद दिया उसको। बड़े प्रसन्न हो गए विश्वामित्र जी महाराज और उन्होंने विद्या बला और अबला, अब बला और दो विद्या दी उनको, भगवान को दो विद्या दी, अति बला, बला और अति बला नाम की दो प्रकार की विद्या दी। उससे क्या हुआ कि जाते लागन छुदा पिपासा, कभी उनको भूख नहीं लगे, कभी प्यास नहीं लगे। अज्वलित बल तनु तेज प्रकाशा, ऐसे ऐसे बाण दिए, एक बाण छोड़ेंगे तो कितनी बाण प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए तो रावण के साथ युद्ध हुआ, उस समय में कितने कितने बाण राम जी एक बाण चलाते, कितने प्रकट होते, कितने राक्षस मारे जाते थे। ऐसे ऐसे कई विद्याएं थी वो दी। कल्याण के अंदर लेख में बला और अबल, बला और अतिबला नाम की जो विद्या है वो क्या होती है वो बताई गई है। तो भूख प्यास नहीं लगती उससे। और अब आप देखिए, इतने बंदर थे लंका के अंदर, कहीं वर्णन नहीं आता है कि लंका के सारे फल खा गए हों, लंका का तालाब का सब पानी पी गए हों। अब बला और अब अतिबला तो राम और लक्ष्मण को सिखाया था, राम और लक्ष्मण ने क्या ऐसा अपने सेना पर प्रभाव किया, इतने बंदर तो सारी लंका का पानी पी सकते थे, एक ही दिन में सब फल खा सकते थे, फिर क्या करें दूसरे दिन। पर वो ही विश्वामित्र जी के द्वारा दिया हुआ जो बला और अति बला का प्रभाव था वो राम जी ने अपने सब सेना के अंदर फैलाया, ऐसा बाण लगाया, ऐसी विद्या फैलाई, किसी को वहां पर भूख प्यास लगती नहीं थी। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजना दीन भगति हित जानी। आयुध सर्व समर्पिके, सब प्रकार के आयुध समर्पित कर दिए। भगवान कंदमूल फल खाते हुए वहां पर रहे और फिर जो है भगवान ने कहा अब करो आप निर्भय होकर के यज्ञ करो, निर्भय यज्ञ करो, तुम जाइए निर्भय होकर के यज्ञ करो। फिर था मारीचाया, मारीचाया तो राम जी ने एक बिना पंख का बाण छोड़ा। देखो बाण के पीछे पंख होते हैं, वो पंख अंदर जाते हैं ना तो सीधा जाकर के यहां सब जगह घाव करके मर जाता है। उसके बिना पंख का बाण लगाया, बिना पंख का बाण लगाने से वो बाण के साथ साथ ही चला गया, सोयोजन चला गया सागर पार मारीच, क्योंकि भगवान को मारीच से अभी और काम लेना था, मारीच से अभी बहुत काम लेना था भगवान को। फिर सुबाहु आया, सुबाहु को मार दिया, सुबाहु को मार करके और निर्भय पूर्वक वो यज्ञ किया और कुछ दिन तक भगवान वहां पर रहे। इधर अब देखो कथा को बदलते हुए बोलते हैं कि भगवान जब वहां रहे तो भगति हेतु बहु कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। भगवान सब कथाओं को पुराणों को जानते थे, विश्वामित्र जी ने फिर भी सुनाया, विश्वामित्र जी को मालूम था। देखो कभी कभी जानकार को सुनाने में ज्यादा आनंद आता है, जो आदमी जानकार होता है उसके सामने यदि बात कही जाए तो अपने ज्ञान का शोधन होता है, और मूर्खों ही मूर्खों के बीच में बोलते जाओ उनको तो कुछ पता नहीं और अपने टोरे लगाते जाओ। जानकारों के बीच में बात होती है, इसीलिए कहा जाता है विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों के बीच में भागवत की परीक्षा होती है। विद्वानों के बीच में बोलने वाली बात हो, बोलने के माने सहस्रु जायते सूर है, सूरवीर तो हजारों में कोई होता है, और जो है विद्वान होता है वो कैचित विद्वन मंडिता, वो विद्वानों में जो विद्वान कहा जाता है वो संसार में बहुत कम होते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। अब देखो एक इसके बाद बहुत विचित्र बात बताइए। तब मुनि सादर कहा बुझाई, ऋषि ने कहा महाराज अब आप जो है हम आपसे प्रार्थना करते हैं, चरित्र एक प्रभु देखिए जाइए, अब एक आप चरित्र देखिए। अब वो चरित्र के लिए क्या बोलते हैं विश्वामित्र जी, वे विश्वामित्र जी बोलते हैं जनक जी महाराज क्या एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है, चलो तुम भी। कहां चलो, लेकिन चरित कहाँ गया वो? चरित एक प्रभु देखिए जाई, एक चरित्र देखिए आप। वो एक चरित्र क्या है कि आश्रम एक दीख मगमाई, जब वो चलने लगे तो अहिल्या का आश्रम, गौतम ऋषि का आश्रम आया। यहां भगवान का चरित्र होगा, देखो ये चरित्र होगा। फिर आगे सीता स्वयंवर में ना ये कथा ही है, कोई चरित्र नहीं है वहां, चरित्र यहां है। चरित एक प्रभु देखिए जाई, तो यहां क्या बताएंगे? यहां बता रहे हैं कि गौतम ऋषि के वहां पर भगवान आश्रम में गए, गुरुजी साथ में थे, गुरुजी से पूछा, महाराज ऐसा आश्रम तो हमने कभी देखा ही नहीं, जिस आश्रम के यहाँ कोई पक्षु नहीं, कोई पशु नहीं, कोई जीव नहीं, कोई जंतु नहीं, कोई चींपी नहीं, जो चिड़िया चहकती हैं, कबूतरों का गुटरगू होता है और तोतों का बड़ा मधुर कलरव होता है, पक्षी तो होते ही वृक्षों पर, यहाँ न तो कोई वृक्षों में हरियाली है, न कोई वृक्षों में फल फूल लगे हुए है, न यहाँ कोई पशु पक्षी जीव जंतु दिखाई देते हैं, क्या है महाराज? तो सकल कथा मुनि कहा विशेषी कि देखो इस आश्रम को साथ मिला हुआ है राम। अच्छा अच्छा अच्छा, और सब कथा सुनाई। सब कथा क्या सुनाई? वो पूरी कथा गोस्वामी जी महाराज ने लिखना उचित नहीं समझा, इतना ही कहा कि गौतम की नारी थी और वो शिला बन गई थी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, क्या महाराज ये विचित्र सी शिला कैसी है? कभी यूं होती है, कभी यूं होती है, अपने आप ही कभी यूं होती, कभी यूं होती है, ये ऐसी कैसी शिला है महाराज? तो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, क्या महाराज ये तो गौतम की नारी है अहिल्या, इसको श्राप मिल गया था गौतम ऋषि का ही, तब ये पत्थर हो गई। तो इन गौतम ऋषि को श्राप क्यों मिला? वो सब कथा सुना दी। महाराज देखिए कृपा करो, ये आपके चरण कमल को चाह रही इसलिए यूं हो रही है, अब इसका समय पूरा हो रहा है, प्रार्थना कर रही है, बिचारे पास वाणी तो है नहीं, इसके पास कोई इंद्रियां है नहीं, इसलिए क्या करे वो, बस वो यूं ही रही है, ये आपके चरण कमलों को चाहती है। तब राम जी महाराज ने परसत पद पावन शोकन सावन, अपने पवित्र जो चरण है उनका स्पर्श किया, जिन चरणों के दर्शन मात्र से शोक दूर हो जाते हैं उन चरणों का यूं स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही एक तपस्या का पुंज के रूप में वो शिला बदल गई। देखत रघुनायक जन सुखदायक, भगवान राम जी इस लीला को देखते रहे और जन सुखदायक, लोगों के लिए बड़े आनंद की बात, सन्मुख होई कर जोरी रही, आगे हाथ जोड़ करके बोलने लगी। अब क्या पर मुख नहीं आवन बचन कही, वो बोलना चाहती है, प्रेम के कारण से अधीर हो गई, बचन ही नहीं आए, और वो बोले और जल की धारा निकले, जल की धारा ही धारा बहे। फिर बड़ी मुश्किल से अपने मन को धीरज बंधाया, निर्मल वाणी से भगवान से कहने लगे कि हे रघुराई, अब देखना एक विचित्र बात, मैं नारी अपावन, आज मेरा आपने उद्धार किया महाराज, पापी प्राणियों का तो बहुत उद्धार आपने किया है, मैं एक पत्थर बन गई पत्थर, और पत्थर से आपने उद्धार कर दिया महाराज, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, और रावण रिपु जन सुखदायी, ये रावण रिपु शब्द दिया, आप रावण के शत्रु हैं। तो कहे अहिल्या जी अभी तो राम जी का विवाह ही नहीं हुआ है, अभी तो सीता जी के अयोध्या में आगमन ही नहीं हुआ है, अभी वरदान ही नहीं मिला है, अभी वन में गए ही नहीं है, रावण तो तब न सीता को चोरेगा, आपने अभी से ही रावण रिपु कैसे कह दिया जी? तो इसमें राम जी की अनादिता सिद्ध करते हैं कि राम जी अनादि हैं, अनादि। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, आप हे महाराज मैं तो अपावन हूं, बड़ी अपवित्र हूं, सारे जगत को आप पवित्र करने वाले हो और सारे संसार को सुख देने वाले हो। हे रावण के शत्रु, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी पाही माम रक्षा करो, रक्षा करो। इतने दिन मैं समझती थी कि गौतम ऋषि ने, मेरे पति ने जो श्राप दिया था वो अच्छा नहीं किया, पर आज मेरे समझ में आया, मुनि श्राप जो दीना अति बल की ना परम अनुग्रह में माना, बहुत अच्छा किया महाराज। यदि उस समय मुझे श्राप नहीं देते आपके दर्शन कैसे होते। देखो भगवान जो कुछ संसार में परिस्थिति भेजते हैं, जिसमें खराब परिस्थिति भेजते हैं, उसका परिणाम बड़ा अच्छा होता है। खराब परिस्थिति में हम लोग घबरा तो जाते हैं, सहन करने में थोड़ी कठिनता तो होती है, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में, अनचाही परिस्थिति में लाभ बहुत होता है। मेरा ही पति और मुझे ही श्राप देवे और पत्थर हो जाने का श्राप देवे महाराज, ये कोई बात है? पर अब मुझे पता चला कि उन्होंने बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की, ताकि मैं आज आपके देखो दर्शन कर रही हूं। जिनके दर्शन शंकर ने किए वो दर्शन आज मेरी जैसी अपावन स्त्री भी कर रही है। अब महाराज मेरी विनती सुनिए, मैं बहुत भोली बुद्धि वाली हूं, मैं और तो कुछ वरदान आपसे चाहती भी नहीं हूं, बस आपके चरण कमला का जो पराग है, आपके चरण कमल का जो रस है, उस रस को पीने के लिए मेरा मन भंवरा बना रहे, बस आपके चरणों में प्रीति चाहती हूं महाराज। और मेरे मन में किसी लोक की, परलोक की, किसी मुक्ति की, किसी बैकुंठ की और की कोई इच्छा नहीं है। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना, बस ये एक ही इच्छा है महाराज। क्यों इच्छा हुई भी ये कि महाराज आपके चरणों से गंगा जी निकली, उस गंगा जी को भगवान ने, आप शिव जी ने अपने जटा में रखा, कोई गंगा की महत्ता समझ के थोड़ी रखा है, गंगा एक नदी है साहब हमारे जटा में रखना, उन्होंने यही समझ के कि ये भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा है, विष्णु भगवान के चरणों का जल है, ये नीचे क्यों गिर जाए भाई। जैसे अभी कोई गंगा जल देवे और कोई गंगा जल का टोपा भी नीचे कर, गंगा जल गिर गया, लो हम हाथ रख देते हैं, कोई गंगा जल को नीचे नहीं गिरने देना चाहते। ऐसे आकाश से जब गंगा जल आई, गंगा जी आई, तो भगवान शंकर देव, अरे भगवान विष्णु का जल है ये, यूं ही नाना मेरे जटा में है, जटा भगवान ने अपनी जटाओं में ले लिया। जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीष धरी सोई पद पंकज जही पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरी। महाराज शंकर भगवान को भी वो कृपा नहीं मिली, शंकर भगवान को तो आपके चरणों से निकलने वाली जल धारा वो रखने को मिली, और मेरे सिर के ऊपर तो साक्षात आपके चरण आज रख दिए महाराज। इससे बढ़कर मेरे लिए क्या आपकी कृपा होगी महाराज। ऐसा कहती हुई गौतम नारी बार बार भगवान के चरणों में गई और गे पति लोक आनंद भरी, अपने पति के लोक में गई। देखो स्त्रियां अपने पातिव्रत्य से अपने पति का उद्धार कर देते हैं। इनके पति जिस लोक में गए, बहुत ऊंचे लोक में गए, परंतु भगवान की भक्ति के कारण से, कृपा के कारण से, आज भगवान ने उनको पति लोक में भेज दिया। पति लोक माने पति का कोई अलग लोक नहीं होता, पति जिस लोक में है उसमें वो पत्नी गई। होता क्या है, यदि पति पाप करता है और स्त्री बड़ी पुण्यवती है, तो स्त्री के पुण्यों के कारण से पति का लोक बदल जाता है। इतना माताओं बहनों का ऊंचा स्थान है हमारे, पति और पत्नी मिलकर एक गृहस्थ है, उसमें पत्नी खूब भजन करती है, भगवान का स्मरण करती है, तो उसका प्रभाव पति के जीवन पर भी पड़ता है, इतना पति का स्थान ऊंचा है। गे पति लोक आनंद भरी, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अस प्रभु दीना बंधु हरी कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते भजू छाड़ी कपट जंजाल। देखो किस वक्त ये दोहा कहा है, वो किस वक्त कहा है कि अरे सठ तुलसीदास, अरे दुष्ट तुलसीदास, भगवान ऐसे दीन बंधु है, दीन बंधु ताड़का का उद्धार किया और अहिल्या को पतिलोक में भेजा। दोनों का से ताड़का का तो एकदम राक्षसी थी वो, और कितना इसका चरित्र खराब, बिचारी अहिल्या को साप, पति ने साप दे दिया उसके चरित्र पर संदेह करके। इसका कल्याण होना बड़ा मुश्किल था, लेकिन भगवान के चरण के स्पर्श मात्र से। अब बताओ अहिल्या से पूछा जाए कि तुमने जीवन में कौन सी तपस्या की, अस प्रभु दीन बंधु हरि। जो आदमी ये समझता हो कि मैंने जीवन में कोई साधन नहीं किया, हे प्रभु मैं दीन हूं और आप दीन बंधु हो, तो अब आप महाराज हमको उद्धार की तरफ ले ही चलो। कारण रहित दया, बिना किसी कारण के दया करने वाले भगवान है। हे सठ तुलसीदास, ऐसे भगवान का सब प्रकार का कपट जंजाल छोड़ करके भजन करो भाई। भगवान के भजन से ही तुम्हारा निस्तार होगा। तुलसीदास जी महाराज अपने लिए ऐसा कहते हैं, तो ये तुलसीदास जी कोई अपने लिए कहते हैं तो ये तो कह ही सकते हैं, पर अपने को समझना चाहिए कि जब तुलसीदास जी ने अपने को सठ कह दिया। एक ने लिखा कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। तो भाई स्थिति में अपने को देखना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं हम। तो उन्होंने अपने आप को सठ कह दिया, तो हम कितने सठ हो सकते हैं। पर वो भजन में लगे तो अपने को भी भगवान के भजन में ज्यादा मात्रा में लगना चाहिए। अब राम जी महाराज आगे जनकपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं।
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम,
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम,
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम,
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम,
जय सीताराम
जय
सीताराम सीताराम सीताराम,
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम,
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम,
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम,
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम,
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम,
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम,
जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
सियावर राम चंद्र की
जय
मोर मुकुटवंशी वाणी
जय
अनंत श्री हरि राम दास जी महाराज की
जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय
जय जय